श्रोताओं, कार्यक्रम मस्जिद और उपासना की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम पहले मस्जिद में भलाइयों का आदेश देने और बुराइयों से रोकने के विषय पर चर्चा करेंगे, जबकि दूसरे भाग में गौहर शाद मस्जिद पर प्रकाश डालेंगे। स्वाति और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि मस्जिद मुसलमानों का सार्वजनिक और विभिन्न वर्गों के लोगों के उपस्थित होने का स्थल है। इस प्रकार से यह स्थल इस्लामी समाज को आगे बढ़ाने और मुसलमानों के बीच वैचारिक समन्वय पैदा करने का बेहतरीन स्थान समझा जाता है, क्योंकि मस्जिद यद्यपि समाज की एक छोटी इकाई समझी जाती है, लेकिन इस छोटी इकाई का इस्लामी समाज में बहुत अधिक महत्व है। इस आधार पर समाज में ईश्वरीय भय, ज्ञान, जिहाद, मित्रता, बराबरी और न्याय जैसी मूल्यवान चीज़ें मस्जिद से व्यवहारिक होना शुरू होती हैं।
मस्जिद समाज में अच्छाई का आदेश देने और बुराई से रोकने का बेहतरीन स्थान है, क्योंकि समाज के भविष्य निर्धारण में हर मुसलमान की सैद्धांतिक जिम्मेदारी है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाए। उसकी जिम्मेदारी है कि वह आसपास होने वाली समस्त घटना और मामलों की निगरानी करे। इस्लाम धर्म में इस चीज़ को अच्छाई का आदेश देने और बुराई से रोकने के रूप में पेश किया जाता है। यह जिम्मेदारी नमाज, रोज़े और ज़कात की भांति इस्लाम के ज़रूरी आदेशों में शुमार होती है।
पवित्र कुरान के सूरह तौबा की आयत क्रमांक 71 में ईश्वर मोमिनों की बेहतरीन विशेषताएं और गुण बयान करते हुए कहता है कि मोमिन पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के सहायक और मददगार हैं, अच्छाई का आदेश देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज स्थापित करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके पैगम्बर का अनुसरण करते हैं। इस आयत से समझ में आता है कि मोमिन लोग एक दूसरे के भविष्य निर्धारण में रुचि रखते हैं, क्योंकि वे एक शरीर के अंगों की तरह हैं। एक व्यक्ति का उल्लंघन और कानून का खिल्ली उड़ाना समाज को प्रभावित करता है।
पैगम्बर इस्लाम बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए अच्छाई का आदेश देने और बुराई से रोकने के बारे में कहते हैं कि लोगों के बीच एक पापी व्यक्ति उस जाहिल व अज्ञानी व्यक्ति की तरह है जो कुछ लोगों के साथ एक नौका पर सवार हो और बीच समुद्र में पहुंचकर अपनी जगह में छेद करना शुरू कर दे। हर व्यक्ति उस पर आपत्ति जताए और वह कहे, मैं तो अपनी जगह में काम कर रहा हूँ, यह मेरी जगह है। निश्चित रूप से यह एक मूर्खतापूर्ण बात है। यदि दूसरे उसे इस खतरनाक काम से न रोके तो ज्यादा देर नहीं गुजरेगी कि नौका डूब जाएगी।
मस्जिद भलाई का आदेश देने और बुराई से रोकने की जिम्मेदारी अदा करने का बेहतरीन स्थान है, क्योंकि मस्जिद भलाई का आदेश देने और बुराई से रोकने का उत्तम स्थल है। मूल रूप से जब पैगंबर इस्लाम मस्जिद का निर्माण करते थे तो तुरंत ही कानून लागू करने, प्रशिक्षण और बयान देने के बेहतरीन स्थान के रूप में उसे पहचानवाते थे।
ईरान की जनता ने भी मस्जिद के इसी स्थान से लाभ उठाते हुए अच्छाई का आदेश दिया और बुराई से रोका तथा अत्याचार और राजशाही व्यवस्था के विरुद्ध लोगों को खड़ा कर दिया और आखिरकार राजशाही परिवार का पतन हो गया और इस्लामी गणतंत्र ईरान का आधार रखा गया। ईरान में मस्जिद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत से शोधकर्ता और लेखक ईरान की इस्लामी क्रांति को मस्जिद की संतान बताते हैं। रोचक बात यह है कि पहले पहलवी शासक रजा खान ने जैसे ही ब्रिटेन के समर्थन से सरकार पर कब्जा किया तो उसने तुरंत एक आदेश जारी करके अच्छाई का आदेश देने और बुराई से रोकने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस घोषणा पत्र में आया है कि केवल सरकारी कर्मियों को लोगों को डराने, धमकाने और वार्निंग देने का अधिकार है और अब धार्मिक छात्रों और धर्मगुरुओं को यह अधिकार नहीं है कि वे इस दायित्व का निर्वहन करें।
ये ऐसी हालत में है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस दायित्व के महत्व के बारे में कहते हैं कि समस्त सदकर्म, यहाँ तक कि ईश्वर के मार्ग में जिहाद, अच्छाई का आदेश देने और बुराई से रोकने के सामने दूर तक फैले हुए समुद्र के सामने एक बूंद है। अच्छाई का आदेश देने और बुराई से रोकने का सबसे अच्छा काम यह है कि एक मोमिन व्यक्ति एक अत्याचारी शासक के सामने पूरी शक्ति से डट जाए और इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाए। यही कारण था कि ईरानी जनता ने शाही परिवार के अत्याचारों को सहन नहीं किया और मस्जिद में अपनी आपत्तियों को बयान किया। मस्जिदों के इमामों के जोशीले बयान और भाषण तथा रजा खान की इस्लाम विरोधी नीतियों पर जनता की कड़ी प्रतिक्रिया के कारण ईरानी जनता सरकार के विरुद्ध उठ खड़ी हुई और उसने शाही व्यवस्था को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि सरकार उक्त घोषणा पत्र को वापस लेने पर विवश हो गई।
इस्लामी क्रांति के अस्तित्व में आने के समय ईरान में मस्जिद विरोध प्रदर्शनों का केंद्र थी। धर्मगुरु और इमाम जमात ने क्रांति को रुख देने के लिए मस्जिद का भरपूर प्रयोग किया। जनता भी इस स्थान से आध्यात्मिक लाभ उठाने के साथ समाज की आवश्यकताओं को भरपूर ढंग से समझते हुए अपनी क्रांति को जारी रखा। शाही सरकार के विरुद्ध पैम्पलेट और पर्चे अधिकतर मस्जिदों में बांटे जाते थे और मस्जिदों में यह काम आसान भी होता था। कभी कभी मस्जिद के इमाम इमाम सज्जाद अली सलाम की शैली पर अमल करते हुए नमाज समाप्त होने के बाद भाषण दिया करते थे और भाषण के बाद शाही सरकार के विरुद्ध दुआ करके अपना रोष व्यक्त करते थे। इमाम जमात, अत्याचार की समाप्ति, न्याय की स्थापना, इमाम खुमैनी की रक्षा और उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी जैसी दुआएं कराते थे।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम के इस भाग में हम ईरान की एक महत्वपूर्ण मस्जिद मस्जिद गौहरशाद के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि मशहद की गौहरशाद मस्जिद ईरान की अहम मस्जिदों में से एक है। यह ऐतिहासिक इमारत इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे के दक्षिण में बनी हुई है। गौहरशाद जामा मस्जिद को तैमूरी काल के प्रसिद्ध वास्तुकारों ने बनाया है। इस मस्जिद के निर्माण में ईंट और चूने का प्रयोग किया गया है। तैमूरी शासनकाल में अमीर गयासुद्दीन तरखान की बेटी गौहरशाद आगा के आदेश पर सन 1418 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण किया गया। शाहरुख तैमूरी की पत्नी के आदेश से इस्लामी जगत की सुंदर मस्जिद मस्जिद गौहरशाद का निर्माण हुआ। महारानी गौहरशाद तैमूरी शासनकाल की प्रसिद्ध महिलाओं में से एक थीं।
मस्जिद गौहरशाद ने धार्मिक मूल्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पहलवी प्रथम के काल में पूर्वी शैलियों को बदलने, धार्मिक मूल्यों को धरातल में पहुंचाने और ईरान की परंपराओं को समाप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए गए। इन प्रयासों में अधिकतर प्रयास जोर जबरदस्ती वाले और थोपे गए थे। रजा शाह प्रथम की इस्लाम विरोधी कार्रवाइयाँ, उसके द्वारा पश्चिम की ओर रुझान रखने वाले तुर्क तानाशाह अतातुर्क के अनुसरण का परिणाम थी। रजा शाह प्रथम ने सबसे पहले पुरुषों के वस्त्रों को परिवर्तित करने और उनको फेडोरा हैट लगाने का आदेश दिया।
रजा शाह की इस कार्रवाई से बहुत से धर्मगुरु ये समझ गए थे कि ये मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के हिजाब तक जाएगा। इसीलिए उन्होंने मशहद के एक वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्ला कुम्मी को सलाह मशवरे के बाद तेहरान भेजा, ताकि वे रजा खान से वार्ता करके उसे उसके कामों से रोक दें। लेकिन आयतुल्ला कुम्मी के तेहरान में प्रविष्ट होते ही पुलिस ने उनको उस स्थान पर नज़रबंद कर दिया जहां वे रुके हुए थे। आयतुल्ला कुम्मी की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। पवित्र नगर मशहद की जागरूक जनता ने मस्जिद गौहरशाद में सरकार के इस फैसले के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन किए।
इस प्रकार से मस्जिद गौरशाद सरकार विरोधी फैसले पर आपत्ति जताने और रोष व्यक्त करने का बेहतरीन स्थान बन गई। कुछ संघर्षकर्ता धर्मगुरुओं की गिरफ्तारी के कारण जनता के प्रदर्शनों और आपत्तियों में तेजी आ गई। राजधानी तेहरान से मशहद की सरकार को आदेश दिया गया कि आपत्ति करने वाले धर्मगुरुओं और उपदेशकों की धरपकड़ शुरू कर दो, किंतु धर्मगुरुओं के बयान सुनने के लिए मस्जिद गौरशाद में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। शुक्रवार 20 तीर सन 1314 हिजरी शमसी की सुबह रजा खान के सैनिक लोगों को तितर बितर करने के लिए मस्जिद गौरशात में दाखिल हुए और निहत्थी जनता पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में कुछ नमाजी शहीद और दर्जनों घायल हो गए, किंतु लोग वहां पर डटे रहे। उन्होंने सैनिकों का जबरदस्त मुकाबला किया। इस हमले के बाद मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग लाठी, कुदाल और फावड़े जैसी चीजें लेकर मस्जिद में घुस गए। गौशात मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। धर्मगुरु एक एक करके मिंबर पर जाते और शाह के अत्याचारों से जनता को अवगत कराते और इस्लाम की शिक्षाएं देते थे।
आखिरकार रजा शाह ने समस्त लोगों और धर्मगुरुओं को सजा देने का आदेश दिया। मशहद शहर की सरकार ने रात के समय अपने सैनिकों को तैयार किया और आधी रात के बाद अपने हमले शुरू किए। इस कार्रवाई से पहले ही मस्जिद गौहरशाद और शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था। मस्जिद के सामने वाली छत पर भारी मशीन गनें तैनात कर दी गई थीं। दोपहर की नमाज के समय सेना के हथियारबंद जवान ईश्वर के घर में घुस गए और लोगों का जनसंहार शुरू कर दिया। रजा खान की सेना ने जनता का ऐसा जनसंहार किया कि आज भी उसके घाव हरे हैं।